ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके बोलो आनंद में। गुड, क्योंकि अगर यहाँ आनंद में नहीं रहे तो और कहाँ रहेंगे। माताओं को मायके जैसा मजा आता है, सोचना भी नहीं पड़ता कि बनाना क्या है, थाली उठाई और चल दिए, है ना? क्या मस्त डोसे बने थे। जब बाबा ज्ञान योग की बरसात कर रहा है, बाहर से इंद्र देवता बरसात कर रहे हैं, प्रेम की बरसात हो रही है, सब तरह की पालना है ना, चाहे प्रेम से भोजन खिलाया जा रहा है और प्रेम से क्लासेस, योग, बाबा की दृष्टि, चारों धाम की यात्रा, क्या बात है। एक ही आंगन में सब कुछ, सोचा भी नहीं था कि ये सब मिलेगा। दुनिया से पूछो, चारों धाम जाने के लिए कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना धन खर्च करके भी, इतनी मेहनत करके भी इतना सुख नहीं मिलता जैसे आप कहते हैं आनंद में, और वो भी कह सके, वो भी नहीं कह सकते। तो इसीलिए ऐसा आनंद आप यहां से लेते लेते सारे संगम युग तक इसको फैला दें, हमेशा सुखी रहें, हमेशा खुश रहें, कुछ भी हो जाए मस्तानी स्थिति बनी रहे। मनमोहिनी दीदी को गोपी मस्तानी कहते थे और 28 जुलाई को उनका विशेष दिन था। तो किस तरह से वो स्थिति बनाए कि हमें किसी चीज की चिंता फिकर ना रहे। गीत में भी सुना ना, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। तो इस तरह की आनंद वाली स्थिति, खिवैया को सौंप दिया तो मुझे क्या चिंता है। और ऐसी मस्तानी स्थिति, निश्चिंत अवस्था बनाने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित हैं, बहुत दूर से, दूर नहीं है वैसे तो, राजस्थान में ही है, भरतपुर के कविता दीदी। एक हाथ से अभिनंदन करेंगे क्योंकि मौन में है ना, तो मौन की वातावरण बाहर फैले रहना चाहिए। भरतपुर के कविता बहन जी, आपको मैं अपने बचपन से देख रही हूँ। मैं बचपन में रही तो ये किशोर अवस्था में रहे। पहली पहली जब यात्रा निकली थी, पद यात्रा 1985 में, तो उसमें बहुत बहुत एनर्जेटिक यूथ सब यात्रा में पैदल पैदल चल रहे थे। हमारे उन दिनों एग्जाम थे, कविता दीदी का हमने कई जगह स्वागत किया था। तो ये बाद में समझ में आया, बड़े होने के बाद, कि ये वही वाले कविता बहन जी हैं। जब स्वागत किया था तब तो पता नहीं था, जैसे जैसे दीदी ने कहा वैसे वैसे, कहीं माला डाल दी, कहीं फूल पकड़ा दिया, इस तरह से था। तो बहुत ऊर्जावान, बेहद सेवाधारी, दिल से सेवा करने वाले, बाबा को बहुत बहुत प्यार करने वाली और सबको प्यार सिखाने वाली हमारी बहुत प्यारी आदरणीय कविता बहन जी आज आप सबके बीच हैं, ये समझाने के लिए कि भट्टी का आनंद हमेशा का आनंद बन जाए तो कैसे वो स्थिति बनी रहे। आप पिछले 38 वर्षों से सेवारत हैं, क्योंकि बचपन से ही ज्ञान में आ गए थे तो सेवा में भी जल्दी लग गए, और जो समझा वो दुनिया को समझाने में जुट गए, विशेष रूप से भारत में। आप राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, लगभग सारे भारत वर्ष में आपने जा जाकर अनेक अपने जैसे लीडर्स तैयार किए हैं, अपने जैसी बहनों को प्रेरणाएं दी हैं, ब्राह्मणों की सेवा की और दुनिया में रहने वाले नॉन बीकेज को बीकेज बनने की प्रेरणाएं दी हैं। तो हम आज आपसे सुनेंगे कि कैसे आप सदा ऊर्जावान, खुश और मस्त रहते हैं, ऐसे हम सब भी रहना सीख जाएं। कविता बहन जी,
ओम शांति। आप सब प्यारे बाबा की याद में, प्यारे बाबा के घर में सब मस्त बैठे हुए, और हमारी मीठी कविता बहन ने कहा, माताएं अपने मायके में आई हैं, सावन मास मनाने। लेकिन मैं तो कहूंगी जल्दी से भाई भी माता बन जाएं, क्योंकि जब हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो बहनें माता भाई बन जाती हैं, तो आज ये भट्टी भाइयों को बहन बनने की प्रेरणा दे रही है। गोपी माना, गोपी कौन होती है? बहन होती है। तो जहां लाभ मिले, जहां फायदा मिले, जहां प्राप्ति हो, वहां हमें अपने स्वरूप को आत्म स्वरूप में परिवर्तित करके बहुरूपिया बन जाना चाहिए। तो सावन है ही बाबा जैसा बन और बाबा की फुहारों के नीचे बैठे रहो। तो आपको डबल सौभाग्य मिला है कि आप श्रावण मास की बरसात का भी आनंद ले रहे हैं और शिव बाबा जैसा सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, सच्ची गोपी बनकर ज्ञान योग का सच्चा सावन मना रहे हैं। तो बड़ा ही हर्ष का विषय है हम ब्राह्मण बने और ब्राह्मण बनकर बाबा के इस तपस्वी स्थली पर, बाबा की इस बेहद वैराग्य भूमि पर, बाबा की इस वरदानी भूमि पर हम एक लक्ष्य को लेकर इकट्ठे हुए। और वो लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण जीवन की संपूर्णता, चरम उत्कर्ष को प्राप्त करना। ब्राह्मण माना गोपी, जैसा कि हमारी दीदी गोपी थी। दीदी ने कोई स्कूल की शिक्षा अध्ययन नहीं की थी, लेकिन आप सबको विदित हो कि दीदी का परम शिक्षक शिव बाबा से इतना अधिक लगाव और प्यार और अटूट संबंध था कि जो बाबा महावाक्य उच्चारित करते थे, उन महावाक्यों में उस समय हेडलाइन, प्रश्न उत्तर, धारणा का सार, कंक्लूजन नहीं होता था। लेकिन दीदी वो मस्तानी गोपी थी जो बाबा की शिक्षाओं का, बाबा के संबंध का, बाबा के प्यार का इतना दिल से, गहराई से अनुभव करती थी, जो महावाक्यों से, मुरली से दीदी हेडलाइन, प्रश्न उत्तर और सार निकाल लेती थी। अभी इतने सारे ब्रह्मावत्स हैं, जब शॉर्टकट लगाते हैं तो क्या करते हैं? पूरी मुरली ना पढ़ के उस हेडलाइन, प्रश्न उत्तर, स्लोगन, वरदान और सार को ही पढ़ लेते हैं। और जो रेगुलर मुरली पढ़ते हैं वो भी रेगुलर वाली मुरली दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे, लेकिन जो हेडलाइन का मक्खन और कंक्लूजन का जो सार है उसको दिन में तीन चार बार पढ़ लेते हैं। कहने का भाव है कि दीदी जैसे मस्तानी गोपी बनी, उसका मूल आधार था ज्ञान के ऊपर गहरी पकड़। जो बाबा कह रहे हैं, बाबा जिस भाव से, जिस अर्थ से, जिस तात्पर्य से, जिस खुशी उमंग को देने के लिए मुझे शिक्षा दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं मुरली के माध्यम से, हम उसी की फोटोकॉपी बन जाएं। आज तो सारे मास्टर नॉलेजफुल बनकर बैठे हैं ना, रूहानी पर्सनैलिटी वाले बनकर बैठे हैं ना। रूहानी पर्सनैलिटी माना गोपी, गोपी माना आत्मा, जो इस शरीर के अंदर, गुप्त गुफा के अंदर बैठकर आत्मा अपना अवलोकन कर रही है। कितनी बार हम बाबा की अपनत्व भरे महावाक्य सुनते हैं कि अतींद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो, कौन है वो गोप गोपी। तो मिहाबा ये भट्टी हमें सिखा रही है कि वो गोप गोपी वृंदावन मथुरा में नहीं है, वो गोप गोपी मैं आत्मा हूं। बाबा से हमारा नेह नाता, बाबा से हमारा आदान प्रदान एक वचन में है, मैं बाबा की, बाबा मेरा। हम सब बाबा के, ये बंधुत्व की भावना है। लेकिन जहां बाबा से लेन देन की बात है, बाबा से प्यार की बात है, बाबा से प्राप्तियों की बात है, तो मैं आत्मा गोपी हूं और मेरा बाबा गोपी बल्लभ है। मैं उसकी मस्तानी हूं, दीवानी हूं, परवानी हूं, एक के सिवाय दूसरा ना कोई। प्यारे बाबा ने अपने वरदानी महावाक्यों में, अपनी ज्ञान की बरसात से मुझे अपना बनाया। हम सबको बनाया ना अपना बाबा ने। हम थोड़ी जानते थे बाबा को, याद करो कहाँ कहाँ बैठे हुए थे, क्या क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। कभी विश्वास भी नहीं था कि हमें भगवान अपना बना लेगा। लेकिन प्यारे बाबा ने हमें अपना बनाया। ये सोच की स्मृति आते ही आत्मा देह की गुफा में पिता परमात्मा के उपकार का चिंतन करने लगती है। उस पल को देखो, उस पल को सोचो, उस पल का चिंतन करो जब मैं बाबा का नहीं था तो जीवन कैसी थी। दिख रहा है ना स्पष्ट। और जब बाबा ने मुझे अपना कहा और अपना कहकर मुझे प्यार से मीठे बच्चे कहा, अपना बनाकर जब बाबा ने मुझे परमात्मा पिता को, बाबा को अपना बनाना सिखाया। हमें तो बाबा को प्यार करना भी था, लेकिन बाबा ने ही हम बच्चों को परमात्मा पिता से प्यार कैसे करना है, संबंध कैसे जोड़ना है, रूरिहान कैसे करनी है, ये सब बातें आती थी हमें बाबा के महावाक्य की मुरली सुन सुनकर हम लोग सीखे। और आज बड़े गर्व से कहते हैं, बड़े फक्र से कहते हैं, हमें भगवान मिला है। मिला ही नहीं, हम उसकी पलकों में पल रहे हैं, हम उसके नैनों में बैठे हैं, हम उसके मस्तक की मणि हैं, हम उसके कुल के दीपक हैं, हम उसके बाहों में खेल रहे हैं, समाये हुए हैं, हम उसके दिल में बैठे हुए हैं, हम उसकी गोद में बैठे हैं। मधुबन आना माना बाबा की गोद में बैठना। देह, देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के पदार्थ याद आते हैं क्या? मधुबन आती सब कुछ, जिसका परहेज हमें बाबा ने बताया कि 2500 वर्ष तक हम बाबा को पुकारते रहे और इस देह देह की दुनिया में व्यस्त रहे, उनको ही निभाते रहे, उनको ही मानते रहे, उनको ही मनाते रहे। लेकिन प्यारे बाबा ने अपना बच्चा बनाकर हमें दो काम ही करने को दिए। पहला काम, अपने को आत्मा समझो, और दूसरा होमवर्क, मुझे याद करो। क्यों याद करो? क्योंकि 2500 वर्ष थे आप मुझे याद कर रहे थे बिना पहचाने, बिना जाने, बिना समझे। इसलिए बाबा हमारे इनविटेशन पर आए हैं, हमने बाबा को बुलाया है, और अब बाबा के दो बातों को हमको पूरा करना है। आज भी बाबा ने कहा ना कि बाबा भोले बाबा के भोले बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? सब बातें याद रखते हैं 2500 साल पुरानी, पर दो बात भूल जाते हैं। और दो बात भूलते ही हमारा गोपी का स्वरूप विकृत हो जाता है, रुल जाते हैं, मस्ती उतर जाती है। इसलिए बाबा ने हमें संगम युग का ये परहेज बताया कि घड़ी घड़ी अपने को आत्म स्वरूप में स्थित करो। गोपी कौन है? आत्मा है, जिस तन के अंदर विराजमान होकर आत्म वृत्ति से अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को, अपनी कर्मेंद्रियों को क्रियान्वित रखती है, वही गोपी है। और जब आत्मा समझकर इस शरीर को हम संचालित करते हैं, कर्म क्षेत्र पर आते हैं, कार्य व्यवहार में आते हैं, तो ये तन हमारा हल्का हो जाता है। जैसे आत्मा लाइट स्वरूप है, ऐसे ये तन भी देह भान के भार से मुक्त हो जाता है, हल्के हो जाते हैं, प्रकाशवान बन जाते हैं। जो संगम युग की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, आत्म स्वरूप स्थिति और तन फरिश्ता स्वरूप। जितना हमारा आत्म स्वरूप स्थिति का अभ्यास बढ़ता जाता है, इस स्वरूप में हम स्थित रहते हैं, उतना हमारा तन प्रकाशवान बन जाता है। तो प्यारे बाबा ने मुझे गुप्त गोपी बनने के लिए, मस्तानी गोपी बनने के लिए, लवलीन अवस्था बनाने के लिए निरंतर उसकी प्राप्तियों की अनुभूति करने के लिए मुझे दो ही आज्ञा दी है। मुझ आत्मा को, प्रत्येक गोपी आत्मा को दो ही आज्ञा दी है, घड़ी घड़ी अपने आप को इस देह से न्यारी करो। देह हमारी 2500 साल पुराने सोच विचार व्यवहार पर चलाती है आत्मा को, जिसको कर्म बंधन कहा जाता। और जब आत्मा अपने निज स्वरूप में स्थित होकर अपने सोच को, अपने बोल को, अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, अपनी कृति को, अपने संस्कार को आत्म स्वरूप में डालती है, तो ये तन भी हमारा, ये तन की इंद्रियां भी हमारी प्रकाशवान बन जाती। आज हमारे सामने हमारी आदरणीय दादी जी उदाहरण है, जीता जागता। दीदी को तो आप सबने नहीं देखा होगा, कुछ ने देखा होगा, लेकिन दादी जानकी जी को हम खुले आंखों से देख रहे हैं कि दादी जी विदेही स्वरूप में स्थित होने के कारण आज 103 वर्ष की आयु प्राप्त होते हुए भी बिल्कुल फरिश्ता, लाइट का गोला नजर आती है। वही सिलेबस दादी जी ने पढ़ाया, जिस पाठ्यक्रम को प्यारे बाबा से हम और आप पढ़ रहे हैं, हमारी आदरणीय दादी जानकी जी ने भी उसी पहले पाठ को पढ़कर इस अवस्वरूप को, इस स्थिति को, इस अवस्था को प्राप्त किया है। हमेशा दादी जी क्या कहते, मैं कौन मेरा कौन। दो बात है ना जो आज हम भूल रहे हैं, बोले बन गए हैं। जो मूल्यवान चीज को साधारण समझ ले उसको भोला कहा जाता है। तो ये बात बहुत मूल्यवान है। जीवन को पूरब से पश्चिम की दिशा में परिवर्तित कर देने वाली है। इस एक बात को भूलने से ही हम देवता से मानव बने, और इस एक बात को याद रखने से ही हम मानव से देव बन जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं। तो मस्तानी गोपी माना, एक बाबा दूसरा ना कोई। जो बाबा ने कहा है आज बाबा ने बताया, ये धुन ये तात उसके विचारों में लगी रहे। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था, घर कितनी दूर है, घर चलना है या नहीं चलना है, ऐसे पूछा था ना। प्यार कितनी लव और अफेक्शन की भाषा है। आज हम अपने लौकिक परिवारों में इस भाषा को नहीं बोल सकते, लेकिन प्यारे बाबा हमें गुप्त गोपियों को जागृत करने के लिए, उस स्वरूप में स्थित करने के लिए कितने प्यार से बोलते हैं। घर दिखता है सामने तो सब भाई बहन क्या कहते हैं, जी बाबा। चलना है ना घर, जी बाबा। कितनी दूरी पर है घर, कितनी दूरी पर है घर, बोलो। सामने है, वो एक सेकंड और एक संकल्प की बात तो पुरानी हो गई। अभी तो ना संकल्प लगता है ना सेकंड लगती है, घर माना सामने। हम घर में स्थित कहां बैठे हो सब, मूल वतन शांति धाम में निज स्वरूप में स्थित है। गोपी माना देह से अलग, गुप्त पुरुषार्थ करने वाली। हाथ कार्डे दिल याडे, सुना है ना। जब से हम बाबा के बने, ये एक एक महावाक्य को हम सैकड़ों बारी हजारों बारी पढ़ते हैं, सुनते हैं, वर्णन करते हैं, एक दूसरों को सुनाते भी हैं। लेकिन जब हम उसका अनुभव करने लगते हैं तो वो अनुभव हमें मस्ती चढ़ा देता है, वो अनुभव हमें वैरागी बना देता है। फिर उसे कुछ नजर नहीं आता, वही वही नजर आता है, मैं बाबा की, बाबा मेरा। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें इतना दिया है। जब से हम बाबा के बने, उस दिन से अपने जीवन को खोल खोल के देखते जाओ। बाबा का बनते ही हमारा समय बढ़ गया, बदल गया, समय बदल गया और समय बढ़ गया, क्योंकि बाबा ने हमें श्रेष्ठ चिंतन दे दिया। जो उलझन की, भटकन की, दुख की, अशांति की बातें थी, वो एक बिंदी आत्मा मानती सारी क्या हो गई, खत्म हो गई, फुल स्टॉप हो गई। कोई बातें आती भी हैं तो हम क्या करते, छोड़ो। आज बाबा ने ये बताया है। तो बाबा की शिक्षा की स्मृति आते ही हमें देह और देह की उलझन भरी बातों से मन अलग हो जाता। तो ये विधि किसने सिखाई? हम बच्चों के सामने वही मुश्किल होगी, हम मुस्कुराते रहेंगे, और दुनिया वाले मनुष्य आत्माओं के सामने वही परिस्थिति होगी जिसमें हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वो लोग, उनका सोच, उनका दृष्टिकोण, उनका समय, सब ऊर्जा नष्ट हो रही है। तो इसको बचाने वाला, इसको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है? बाबा। तो ये स्मृति आते ही हमारी स्थिति समर्थ बन जाती है। और वो समर्थ स्थिति ही, वो प्राप्तियों की स्मृतियां ही। ऐसे हम अपनी बाबा कहते दुखों की लिस्ट निकालो, फिर कहते सुखों की लिस्ट निकालो, क्या क्या सुख हमें संगम युग पर मिला है, किन किन दुखों से हम मुक्त हो गए, देह चिंतन से, पर चिंतन से, पर दोष से, पराई मत से, इन सब से हम क्या हो गए, आजाद हो गए। पहले हम आत्मा रूपी पिंजड़े को इन्हीं बातों ने लॉक किया हुआ था, हमेशा हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करते रहते थे, लेकिन बाबा का बनते ही किससे तुलना करते हैं हम अपनी, बाबा से। हम ब्राह्मणों की आंसर बुक कौन है, ब्रह्मा बाबा। अभी हम नए नए लोग आ रहे हैं, बाबा को नहीं देखा है हमने, आज की आधुनिक लाइफ होने के कारण ब्राह्मण परिवार के बीच में भी हम इतना नहीं रह पाते जो हम अपने वरिष्ठ जनों के नजदीक से कर्म योग या कर्म व्यवहार को देख सकें। लेकिन अध्ययन और चिंतन एक ऐसी शक्ति है कि हम पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, उनके पुस्तकों को अध्ययन करें, उनकी पुस्तकों को हम पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो आप अनुभव करेंगे कि चिंतन के स्तर से मम्मा बाबा भी हमें हमसे दूर महसूस नहीं होंगे। हमारी जो एक जिज्ञासा है, उलहना है कि हम भी मम्मा बाबा के टाइम आ जाते तो हम भी वो सब देख लेते, हम भी सीख जाते, वो हम चीजें आज जैसे जैसे ज्ञान स्पष्ट हो रहा है, जैसे जैसे आज हमें इतने सारे संसाधन ज्ञान की प्राप्ति के मिल रहे हैं, हम YouTube के माध्यम से, हम साहित्य के माध्यम से, हम उसका अध्ययन करें कि बाबा ने बाबा का बनकर नंबर वन आज्ञाकारी बच्चा कैसे बने। हम लेट आए हैं, लास्ट में आए हैं, पाठ्यक्रम वही है, वही हमारा उद्देश्य है जो हमारे मम्मा बाबा ने प्राप्त किया, लेकिन हम लेट आकर फास्ट पुरुषार्थ कैसे करें, उसको जाने, उसको समझें, उस पर हम मनन करें, उसके लिए हम छोटे छोटे माइलस्टोन बनाकर पुरुषार्थ करें। जैसे एक पुस्तक है बाबा की, एक अद्भुत कहानी जीवन पलटाने वाली, दो हैं उसके भाग, लेकिन पहले भाग को हम अध्ययन करें, मनन करें, तो पढ़ते पढ़ते नशा चढ़ जाता है, पढ़ते पढ़ते देह, देह की दुनिया, 63 जन्म के भाव, स्वभाव, संस्कार बहुत पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि उस पुस्तक के अंदर बाबा ने लौकिकता से अलौकिकता को स्वयं पाया और अनेक ब्राह्मण आत्माओं को भी बनाया। उस पुस्तक के अंदर वो विधि है जिससे हमारी साधारणता, जिससे हमारा हद का भाव, जिससे हमारी लौकिकता से छूट जाती है और नशा चढ़ जाता है, स्वमान में स्थित हो जाते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में टिक जाते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल लेस होती है वो लानी नहीं पड़ती, वो स्वतः आ जाती है। तो हिम्मत का एक कदम तो आप सब ने बढ़ा लिया कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, ये हिम्मत का पहला कदम है, लेकिन इसको निभाना अर्थात मस्तानी गोपी बनना, हर ब्रह्मावत्स को बाबा का बनने के बाद आत्म स्वरूप की अनुभूति कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से उसने की हुई है। वो इस अंतर को भी जानते हैं कि देह स्थिति कैसी होती है, और विदेही स्थिति कैसी होती है। बाबा ने ये रस भी हमको चखा दिया। प्रभु मिलन की स्थिति कैसी होती है, ये रस को भी हमने चखा हुआ है। अब आवश्यकता है उसको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने की, और उसके लिए भी हमें बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है। जो आज बाबा ने कहा, अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए सदा चलो। जितना आपको अपने भाग्य की स्मृति रहेगी, उतना भाग्य विधाता की स्मृति बनी रहेगी। कभी गुण से याद करो बाबा को, कभी शक्तियों से याद करो बाबा को, कभी संबंधों से याद करो बाबा को, कभी बाबा ने जो हम पर उपकार किए उनसे याद करो। तो बाबा की याद जितनी मुझ आत्मा को अधिक से अधिक समय रहेगी, उतनी मेरी ये मस्तानी स्थिति बनी रहेगी। उतनी देह, देह की दुनिया, देह के वैभव, देह के पदार्थ, देह का आकर्षण से मैं आत्मा आजाद रहूंगी। गोपियों को जैसे मुरली बजती थी, गोपियों का प्यार मुरली से होता था। जो भक्ति मार्ग में शास्त्रों में बताते हैं वो यही बताते हैं कि जैसे ही मुरली चलती बजती थी, वो तो बजती कहते हैं, हम चलती कहते हैं, हमारी मुरली में और उनकी मुरली में अंतर है। उनकी काठ की मुरली बजती थी और वो वास्तव में मुरली है ज्ञान की मुरली। आप देखो जिस समय बाबा की मुरली का टाइम होता है, विश्व भर के सभी ब्रह्मावत, सभी गोपियां कैसे दौड़ते हैं, कैसे दौड़ते हैं। मन और बुद्धि की सुदबुद्ध भूली होती, हर एक को अपना क्लासरूम, हर एक को दीदी सदली पर बैठी हुई बाबा की मुरली हाथ में ली हुई दिखती है। रास्ते में कोई मिले, कोई टोके, कोई रोके, कोई पूछे, कोई बताए बाद में। ये है मस्तानी गोपी की स्वरूप निशानी। ये भी हम सबको रस है। तो सुदबुद्ध भूल जाती थी और हम बाबा की प्रतिदिन की मुरली को उतने ही जिज्ञासा से, उतने ही सम्मान से, उतने ही अधिकार से, जन्मसिद्ध अधिकार समझकर उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं। और जैसे जैसे गुप्त गोपी आत्मा मुरली सुनती जाती है, वैसे वैसे उसको नशा, ईश्वरीय नशा चढ़ता जाता है और अंदर अंदर वो प्लान करती जाती है कि आज के बाद मैं ये दो बातें कभी भी नहीं भूलूंगी। जो प्यारे थे प्यारे बाबा को मुझे भोला कहना पड़े, बाबा को मैं पक्का वायदा कर दूंगी। आज मुरली सुनते सुनते अंदर प्लान बना लेते हैं कि हाँ बाबा बिल्कुल राइट कह रहे हैं, मैं जब सुबह बाबा के महावाक्य सुनती हूँ तो बिल्कुल अपनी मूर्त स्वरूप में स्थित होती हूँ। जो बाबा ओन इमेज में मुझे देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो बन जाती हूँ मुरली सुनते सुनते। लेकिन जैसे जैसे मुरली के बाद का टाइम बढ़ता जाता है और मैं भोली बनती जाती हूँ आत्मा, और अपने स्वरूप को, अपने रूप को, अपने नशे को, अपनी खुमारी को उतार लेती हूँ। क्योंकि किसी नशेबाज का नशा उतारना हो तो उसे क्या देते हैं, खटाई। खटाई माना विपरीत चीज। तो हमारे नशे को उतारने वाली जो खटाई है वो देह चिंतन है। बाबा ने हमें देह संबंधों में रहते हुए भी आत्मिक चिंतन करना सिखाया है। हमारा ज्ञान, हमारा योग, हमारी धारणाएं, हमारी सेवा प्रवृत्ति मार्ग की है। घर परिवार में रहते हुए अपने अंदर के परिवर्तन की है। हमारा अंदर का परिवर्तन संबंधों को दैहिक संबंध ना मानकर अविनाशी संबंधी माने, आत्मिक दृष्टिकोण से, परमात्मिक दृष्टिकोण से संबंध निभाए। वो संबंध विनाशी है, परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मिक संबंध और परमात्म संबंध अविनाशी संबंध है। इसलिए हम अपनी आत्मिक स्थिति को घर गृहस्थ में रहते हुए, कर्म क्षेत्र पर रहते हुए भी गुप्त गोपिका बना सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि देह दुनिया में जाकर दैहिक चिंतन करके हमारा स्वरूप विकृत हो गया। उसी को बाबा ने आज भोलापन कहा है। तो उस भोलेपन से आज हम इस भट्टी में मुक्त होकर जाएंगे तो गुप्त गोपी, मस्तानी गोपी जैसी हमारी दीदी थी, बाबा की नंबर वन आज्ञाकारी बच्ची और नंबर वन आज्ञाकारी होमवर्क करने वाली विद्यार्थी और नंबर वन बाबा को फॉलो करने वाली शिष्या। गुरु के साथ हमारा क्या संबंध है? शिष्य का। जो उन्होंने कहा वो कल नहीं करना, आज करना है, अभी करना है। तो ये मधुबन की पावन भूमि में आकर आप और हम सब ये संकल्प करें, ये लक्ष्य लें कि आज भाग्य विधाता बाबा ने जो संगम युग की अनुपम निधि हमें दी है, जो 5000 साल हमारी चलने वाली है, जो जन्म जन्मांतर की कमाई है, जो कल्प कल्पांतर का मेरा स्वरूप है, मुझे यहां सेट करना है। अपने 84 जन्मों को हम देखें, सतयुग के आदि में मैं कैसी थी? दिखाई दे रहा है अपना स्वरूप? कैसा स्वरूप था सतयुग में हमारा? बोलो, जिन्हें दिख रहा है हाथ उठा के बताओ, जिन्हें अपना सतयुगी स्वरूप दिखाई दे रहा है। डबल क्राउन, सूर्यवंशी, देवता घराना, 16 कला से पूर्ण, संपूर्ण सतो प्रधान। कौन थी? मैं आत्मा थी। पुरुषार्थ की बात आए तो मैं आत्मा, प्राप्ति की बात आए तो हम सब आत्मा। ये मैं थी, वो मैंने अचीव किया था देवत्व स्वरूप। बाबा मुझे ऐसा डबल क्राउन बनाने आए हैं। उस डबल क्राउन को पाने के लिए मुझे गुप्त गोपी, मस्तानी गोपी, परवान चढ़ी गोपी, प्रभु प्यार में खोई हुई गोपी, समाई हुई गोपी बनना है। मन की आंख, बुद्धि की आंख, एक बाबा जो मुझे बनाने आया है वो मेरी बुद्धि में हो। हम सब ने तीसरे दिन के पाठ में लक्ष्य लिया है ना, मुझे लक्ष्मी बनना है, मुझे नारायण बनना है, दोनों से परे मुझे विष्णु चतुर्भुज बनना है। अर्थात 24 आवर्स स्वदर्शन चक्र चलता रहे। कौन सा चक्र? स्वदर्शन माना आत्मा रूपी गोपी को मैं देखती रहूं। संगम युग माना शंख बजता रहे। कौन सा शंख बजाना है? मैं बाबा की, बाबा मेरा। गदा कौन सी है? बातें आएंगी जाएंगी लेकिन मैं तटस्थ। ड्रामा एक्यूरेट रिपीट हो रहा है और मैं हीरो एक्टर आत्मा हूं। ड्रामा का डायरेक्टर मेरा पिता है, इसलिए मेरा कुछ भी अकल्याण हो नहीं सकता। तटस्थ भाव गदा। तो मैं गुप्त गोपी बनकर, मस्तानी गोपी बनकर, कमल पुष्प समान, निर्लिप्त, निराकार, निर्विकार जीवन जी लूंगी। कभी हमारा अमृत वेला मिस होता है तो मन कैसा होता है? खुश होता है? कोई बाबा की श्रीमत की में मनमत मिक्स होती है तो कैसा लगता है? दुख होता है ना। तो ये भट्टी में हम यहाँ आए हैं, बड़ी बड़ी बातों को तो हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी सलौकिक जीवन की जो छोटी छोटी धारणाएं कई बार हम भोले बनकर मिक्स कर लेते हैं, जो हमारे नशे को, खुमारी को, स्वरूप को विकृत कर देती हैं, नीचे उतार देती हैं, उनको हमें यहां ही भस्म कर देना है, ताकि मेरे मीठे प्यारे बाबा को, मेरे जन्म जन्मांतर के सहारे रक्षक शिक्षक बाबा को ये समझाना ना पड़े कि मेरे बच्चे भोले बन जाते हैं। बाबा जिस बात को याद रखने की कहते हैं उसको, और जिसको याद नहीं करने की कहते हैं उसको याद कर लेते। तो आज से हम इन दोनों बातों को, एक छोड़नी है, एक पकड़नी, एक छूटी तो दूसरी पकड़ जाएगी, वो पकड़ ली तो वो छूट जाएगी, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। तो प्यार में हर कार्य करना सहज होता है। तो हम सब गोपी हैं, मस्तानी हैं, दीवानी हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी देखे, जब बाबा के बनते हैं तो सब करते हैं ना, लेकिन हमारे पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमारी चाल की रफ्तार में कोई रुकावट नहीं आती। वर्षों हम बाबा की शक्ति से बाबा के पलकों में और बाबा की गोदी में चलते हैं, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं और बाबा उंगली देते हैं कि उंगली पकड़ के चलो, तो कई बार हमारी पकड़ ढीली और कई बार हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है। यह भट्टी में हम आए हैं, तपस्या भूमि पर हम आए हैं, परिवर्तन भूमि पर आए हैं, तो ये लक्ष्य हम ले लें कि बड़ी बड़ी बातों को जैसे हमने प्रभु प्यार में, प्रभु आज्ञा में हमने धारण किया, अपने को शक्तिशाली बनाया, प्रभु की पालना का पात्र बनाया, अब इन छोटी छोटी बातों को भी हम स्वाहा करके जाएंगे, मन के कोने से, चहु ओर से श्रीमत की झाड़ू लेकर चेक करेंगे कि कहां भी कोई बात छुपी हुई ना हो जो मुझे गोपी से देह में ले आती है। देह में आना माना गोपी की मूरत को बिगाड़ना, देह में आना माना अपने प्रभु प्रेम के रस को कम कर। बाबा ने कहा 5 मिनट नहीं जाती है हमारी, वो 5 मिनट कितनी है, 5 साल की, 5 वर्ष का घाटा है। तो एक संकल्प और एक स्वप्न भी हमारा इस संगम युग का खत्म ना हो। बाबा ने कहा आईसीएस बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई के लिए किसी को कोई भी एग्जाम देना होता कितना अध्ययन करते हैं, तो ये भट्टी हमें मिली है अपने पर अध्ययन करने के लिए। बाबा की मुरली और मुरली को अपने ऊपर मैं अध्ययन करूं कि जो बाबा ने कहा है और मैंने समझा है, सारी बातें तो अभी हमने समझी भी नहीं है, जितनी बातें मैंने बाबा की मुरली से समझी हैं, उनको मैंने अपने जीवन में कहां तक लाया। ये मुरली ही हमें, जैसे जैसे मुरली गोपी सुनती है वैसे वैसे वो मस्तानी बनती है, जिसे कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। तो वो सुख कौन सा है, वो अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों से परे का सुख है, अविनाशी सुख है, जिसे कोई मुझसे बांट नहीं सकता, छीन नहीं सकता, बल्कि मुझे मालामाल बनाता है, वो सुख है। तो आज से हम ये परिवर्तन भूमि पर संकल्प करेंगे कि मुझे अपने निज स्वरूप में स्थित रहना है, हर कार्य को, हर व्यवहार को, हर संस्कार को मुझे पिता श्री ब्रह्मा बाबा जैसा, मातेश्वरी जगदम्बा जैसा बनाना है। संपूर्ण पास तो वही है ना, हमारी दादी दीदियां संपूर्ण पासवीद ऑनर होकर हमारे सन्मुख हैं। उनका नाम ही हमें शक्ति देता है, विदेही बना देता है, अशरीरी बना देता है, गुप्त गोपी बना देता है। तो सदैव हम ध्यान रखें कि हमारी अमृत वेले से लेकर रात्रि तक की दिनचर्या श्रीमत प्रमाण चले। सेंटर्स पर तो एक घड़ी हमें पता नहीं चलता है कि हमारी क्या दिनचर्या है, क्या कायदा है, लेकिन मधुबन भूमि पर हम बैठे हैं और हमारी दिनचर्या यहाँ उसी के अनुरूप चल रही है। अब हम उसको वैसा ही सेट करें। लौकिक कार्य क्षेत्र पर जाते भी आजकल तो ये मोबाइल इतना अच्छा साधन है, ट्रैफिक कंट्रोल है, टाइम घंटे भर में 2 मिनट का, 1 मिनट का साइलेंस है, वो सब हमें प्राप्त होता रहता है और हम अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। कर्म में गए वापस आए, कर्म में गए वापस आए। पहले डिस्पोजेबल सिरिंज नहीं होती थी, पहले एक ही सिरिंज से अनेक पेशेंट को इंजेक्शन देना होता था, तो वो क्या करते थे, एक पेशेंट को इंजेक्शन दिया, फिर उसे तापते थे, फिर दूसरे पेशेंट को उसी सिरिंज से इंजेक्शन देते थे। अर्थात हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के वायुमंडल को प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, उस देह वृत्ति का असर हमारे ऊपर ना आए, तो हम अपनी आत्मा रूपी सुई को, मन रूपी सुई को, बुद्धि रूपी सुई को अपनी परमात्मा पिता की ताप से तपाते रहे। कार्य तो करना ही है, क्योंकि हमें कमल पुष्प समान बनना है। तो सुबह से लेकर रात्रि तक की दिनचर्या, उस दिनचर्या के अंतर्गत जब हम अपने संकल्प और श्वास को, कर्म और व्यवहार को व्यतीत करते हैं, तो हमारा जीवन, हमारा नशा, हमारा स्वरूप, हमारी स्थिति वही बनती है जो हमने ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्य लिया है, जो हमने रात्रि सोने से पूर्व आज का ब्योरा बाबा को देकर, दिन भर का लेन देन प्यारे बाबा से करके और अपने स्वरूप को बनाया है। वायदा करते हैं ना बाबा, आज हमसे ये भूल हो गई, आज मैंने ये लक्ष्य लिया था पुरुषार्थ को करने का, लेकिन मैं आत्मा किसी कारण से, इस कारण से नहीं कर सकी, बताते हैं ना बाबा को प्यार से। तो जब हम वो पहले दिन का लक्ष्य लेते हैं, बाबा को बताते हैं और अगले दिन का लक्ष्य लेते हैं, तो वो उसी समय बाबा हमारे मन को, बुद्धि को इतना शक्तिशाली बना देते हैं और बाबा की दृष्टि से हमें एहसास होता है कि बाबा हमें रेस्पॉन्ड दे रहे हैं, अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, हो गया बहुत अच्छा, और जो रह गया ये कल से नहीं होना चाहिए। कभी बाबा हमको ये उलाहना नहीं देते कि मैं आपको इतने वर्षों से समझा रहा हूँ, इतने वर्षों से सिखा रहा हूँ, और आप हैं कि इतनी बार वायदा कर चुके हैं लेकिन फिर भी इसको नहीं कर पा रहे, कहते हैं कभी बाबा ऐसे। बस यही अंतर हम आत्माओं में है, जो परमात्मा पिता कभी हमें उलहना नहीं देते और हम खुद अपने आप में महसूस कर लेते हैं कि ये बात मैंने इतने लंबे समय से नहीं निकाली है और मैंने बाबा को इतनी बार वचन दिया है, इतनी बार बाबा ने मुझे रियलाइज कराया है और मैं आत्मा इसको त्यागना चाहती हूँ, छोड़ना चाहती हूँ, ये मुझे आत्मा के नशे को उतार देती है, लेकिन फिर भी मैं आत्मा इसको पूर्ण रीति नहीं कर पा रही। फिर भी बाबा हमें वही रूहानी दृष्टि देते हैं, वही मीठे बच्चे बोलते हैं और वही हिम्मत हौसला देते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, अब से लग जाओ। तो ऐसे प्यारे थे प्यारे बाबा की, जितने उपकार का हम चिंतन मंथन करते हैं तो पुरुषार्थ सहज हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। रात्रि संकल्प ले लें, सुबह से उसको छोटे छोटे टिप्स बनाकर, बाबा को अपने सन्मुख रखकर, वरिष्ठ भाई बहनों को अपने सन्मुख रखकर हम पुरुषार्थ को करते चले, तो आप पाएंगे कि जो खुशी, जो नशा, जो स्थिति आप बेहद घर में बना रहे हैं, वैसी ही स्थिति आप वहां जाकर भी बनाए रखेंगे और अपने इस अलौकिक संगम युग के जीवन को अतींद्रिय सुख से भरपूर रख पाएंगे। ओम शांति।
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
अजमा में कामयाबी तू झुकाए जा,
खुशियों के गीत सदा